ఓం శాంతి. అభి కా హమారా విషయ హై అజామిల్ కా పతన్ ఔర్ ప్రాయశ్చిత్, క్యోంకి ఆజ్ బాబా నే మురళి మే అజామిల్ కో యాద్ కియా హై. ఇస్ విషయ మే ప్రవేశ్ కరే ఇస్సే పహలే आज का प्रश्न क्या था मुरली का? किस एक बात की बलिहारी के कारण तुम लकी स्टार्स गाए हुए हैं? तो क्या है उत्तर? पवित्रता के कारण. और ये कहा कि तुम पवित्र बनके भारत को भी क्या कर रहे हो? पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हो, और इसलिए तुम सबसे ऊंचे सेवाधारी हो. और ये जो हमें सिखाया शिव पिता ने ब्रह्मा के थ्रू, और इसने ब्रह्मा और श्री कृष्ण में भी अंतर बता दिया. कौन ऊंचा है? ब्रह्मा बाबा ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर रहा है अर्थात चढ़ती कला में है. श्री कृष्ण प्रालब्ध खा रहा है, भोग रहा है, मतलब गिरती कला में है. तो चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला गाया हुआ है. तो एक ओर तो बाबा ने पवित्रता की बात कही कि पवित्रता के कारण तुम लकी स्टार्स बनते हो, गाए हुए हो, और दूसरी ओर अजामिल को याद किया जिसमें कहा कि अजामिल जैसे पापियों का गायन है. एक तरफ पवित्रता की बात कर रहे बाबा, और दूसरी तरफ उदाहरण किसका दे रहे हैं? पापी का. अजामिल पापियों का गायन है. और फिर ये भी कहा कि अजामिल कैसे बनते हो? तो का पांच भूतों ने तुम्हें अजामिल बनाया है. पांच भूतों ने अजामिल बनाया है. इन पांच भूतों के कारण तुम पतित बन जाते हो. तो यात्रा है पवित्र बनने की, लेकिन पतित कौन बना देता है? पांच विकार, पांच भूत. अब ये जो अजामिल है, ये कौन है अजामिल? क्या ये कहानी हमारी है? क्योंकि बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो बातें आती है वो संगम का रेफरेंस है. हाँ, जैसे बताते हैं कि देवताएं हमेशा लड़ते रहते हैं, ऐसे बताते हैं ना शास्त्रों में. और कई लोग इसलिए कहते हैं आपके शास्त्रों में क्या सिर्फ लड़ाई होती रहती है क्या? तो वास्तव में वो देवताएं लड़ते हैं किस बात के लिए? उन देवताएं तो किससे लड़ रहे हैं? विकारों के साथ लड़ रहे हैं. तो वो बाहर वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम ब्राह्मणों को समझ में आता है. कारण यह है कि हमें अभी पूरे चक्र का ज्ञान हो गया है. हम संगम पर खड़े होकर पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख पा रहे हैं. बाबा कहते हैं कल की ही बात है. हाँ, कल तुम पतित थे, कल तुम पवित्र बनने जा रहे हो, बन जाओगे. ये तुम्हारी बीच में जहां खड़े हो टिवाटा है. तो अगर ये अजामिल की कहानी लगता है कि हमारा ही रेफरेंस है, तो कैसे उसका पतन हुआ है और कैसे उसका फिर उद्धार भी हुआ है? ये जो शास्त्रों में कहानी आती है उसमें ये दिया रहता है. पतन हुआ है वो कैसे पता चलता है? तो बताते हैं कि अजामिल वास्तव में एक ब्राह्मण था, विद्वान था, पूजा पाठ करता था, वेदों का पठन करता था, सदाचारी था, शीलवान था, सात्विक था, बुराइयों से अपने आप को परे रखता था, लेकिन फिर ऐसे ब्राह्मण का पतन कैसे हो गया? ये हमें समझना है, क्योंकि हम भी अपने ब्राह्मण जीवन में कहीं कहीं फिसल जाते हैं। और हमने कहा कि कहानी संगम का रेफरेंस है, तो बताते हैं कि अजामिल, जैसे कहा कि इतने सारे गुण थे उसके, तो भगवान की मूरत का ध्यान करता था, पूजा अर्चन करता था, सब कुछ, क्योंकि ब्राह्मण माना ही। आज भी बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा क्या है, पतितों को पावन बनाना, तो वो भी ब्राह्मण था, तो उसका खुद का ये कार्य था पतितों को ब्राह्मण पावन बनाना, लेकिन खुद ही पतित हो गया, खुद का ही पतन हो गया। कैसे? जो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे सावधान रहना है, खबरदार रहना है, ये इंद्रियां क्या है, चलायमान है, और इस सावधानी के नाम पर बाबा ने हमें चार स्तंभ दे दिए। राजयोग के चार स्तंभ बताते हैं ना जिज्ञासुओं को, जब नया नया कोर्स कराते हैं तो चार पिलर कौन से बताते हैं? नित्य सत्संग करना है, अन्न की शुद्धि रखना है, दिव्य गुणों को धारण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं पावन बनने के लिए, पतित हुए थे दो युग के बाद तो हम पतित हो ही गए, क्यों हुए? तो कहा देह अभिमान आ गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी दिखाते हैं, तो जड़ को पकड़ता है कि क्यों हुई बीमारी, और उस जड़ को पकड़ के दवाई प्रिस्क्राइब करता है, लिखता है, और साथ में डूज एंड डोंट्स देता है कि क्या परहेज करना है। तो भगवान ने भी आके बता दिया कि दो युगों तक तो तुम बहुत अच्छी पवित्र जीवन जी रहे थे, परम धाम से जब इस धरती पर आए, दो युगों तक सतयुग और त्रेता बहुत ही पवित्र जीवन जी हमने, लेकिन जैसे ही दो युग पूरे हुए, द्वापर में हमने प्रवेश किया और हमको रावण ने घेर लिया, हम पतित बने, हम बॉडी कॉन्शियस हुए। का हम नेचुरल सोल कॉन्शियस हुआ करते थे दो युगों में, और द्वापर आते आते सोल कॉन्शियस से गिर के बॉडी कॉन्शियस में, और बॉडी कॉन्शियस एक बार शुरू हुआ तो इस कलयुग के एंड तक आके अपनी चरम सीमा को छू गया। और वही बाबा ने आके बताया कि बच्चे तुम्हारे जीवन की जो हालत हो गई है उसका मुख्य कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अब इसलिए उस बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ो और सोल कॉन्शियस वाले जीवन जीना आरंभ करो। लेकिन ये सोल कॉन्शियस की स्टेज बनाने में मुझे सफलता मिले उसके लिए परहेज दे दी, चार चार परहेज दे दी, कि नित्य सत्संग करना होगा, अर्थात नित्य मुरली का श्रवण करना होगा, अन्न की शुद्धि रखनी होगी, दिव्य गुणों को धारण करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ये ब्राह्मण था अजामिल, वो भी यही कर रहा था, लेकिन क्योंकि 63 जन्मों के तो पापों के बीज आत्मा के अंदर पड़े हैं, 63 जन्मों के सोल बॉडी कॉन्शियस में रहकर हमने बहुत कुछ किया है इंद्रियों के वशीभूत होकर, और वो सारे बीज पापों की गठरी अंदर है, और इसलिए बाबा कहता है सावधान होकर जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि अंदर पड़े हुए बीज को, चूंकि अभी सोल कॉन्शियस वाले जीवन जीना शुरू कर दिया है, अर्थात उनको अब उचित मात्रा में जो धूप और पानी मिलना चाहिए था वो हमने बंद कर दिया है उनको। लेकिन अगर थोड़ी भी असावधानी हुई, फिसले, तो उसको धूप पानी अगर मिल गया तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ऐसा ही अजामिल के जीवन में हुआ है। तो एक बार कहते हैं वो गया घर से बाहर। जब घर से बाहर गया, जंगल की ओर रास्ता जा रहा था, तो देखा कि झाड़ियों की झुरमुट की उस ओर से कुछ आवाज आ रही है, जैसे कोई वहां पर कोई व्यक्ति होंगे। दिखाई नहीं दे रहे, झाड़ियों के पीछे से आ रही, तो सोचता है जाके देखूं कि आखिर भी ये आवाज किसकी आ रही है, कौन है वहां पे झाड़ियों के पीछे। और जाता है तो देखता है कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों निर्वस्त्र है और दोनों आलिंगन में मस्त है। जैसे वो दृश्य देखता है, क्योंकि ब्राह्मण है, जीवन में डूस एंड डोंट्स फॉलो कर रहा है, दृश्य देखते ही पलट जाता है। तो छी छी, मैंने क्या गंदा दृश्य देख लिया, और ऐसा सोच के आगे निकलता है। लेकिन एक बार दृश्य अंदर चला गया है, उसका मन कहता है एक बार फिर से देख लूं उस दृश्य को, एक बार फिर से देख लूं उस दृश्य को। हो सकता है कि इस बार वो दोनों इस क्रीड़ा में नहीं हो, और फिर से जाके देखता है, और फिर तुरंत भागता है, अपने मन को धिक्कारता है। धिक्कार है, तू ये कर क्या रहा है, तू ब्राह्मण है, तू कैसे दृश्य के प्रति तू आकर्षित हो रहा है। ऐसे करके फिर से पलट खाता है, फिर आगे चलता नहीं। फिर उसका मन कहता है नहीं नहीं, शायद शायद वो स्त्री संकट में होगी, मुझे उसको मेरे सहयोग की उसे जरूरत होगी, शायद मैं उसको कुछ सुरक्षा दे सकूं। ऐसा कहकर फिर पलटी मारता है और फिर देखता है, फिर वो तो उसी में मस्त है, फिर पलट के आता है। और ऐसा करके घर लौट के आ जाता है। अब जब घर लौट के आ जाता है रातों में, अब तक तो ब्राह्मण था ना, तो कौन उसके ख्यालों में होता था, भगवान की मूरत होती थी। लेकिन अब कौन सी मूरत आने लग गई, वही जो उसने दिन में देखी है। खैर, वो रातों में वो ख्यालों में करते हुए फिर सो गया। लेकिन जैसे कहते हैं कि इंसान सुबह ज्यादा ही सात्विक होता है, गहरी नींद करके उठता है तो वापस अपने पूजा पाठ में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती है, दिन की ओर बढ़ती है, और वो वेला आती है कि जिस वेला में वो दृश्य देखा था, उसका ख्याल फिर से जोर पकड़ता है कि आज मैं जाऊं उसी स्थान पर, फिर से देखूं क्या हो रहा है। और फिर जाता है, फिर वही दृश्य दिखाई पड़ता है, फिर पलट के आता है। ऐसे कुछ दिनों तक उसका सिलसिला, एक बार देख लूं, ये सब क्या है, ये जो हम कहते हैं मन और बुद्धि। हम पहले दिन लेसन में जिज्ञासुओं को यही कराते हैं कि मन बुद्धि संस्कार कैसे काम कर रहे होते हैं। कि एक सिचुएशन आपके लाइफ में आई, जैसे सरल करके उनको बताते हैं कि समझो आप शराब नहीं पीते हैं, और आपके सामने किसी ने पहली बार शराब की ऑफर रखी, क्योंकि वर्षों से शराब न पी है और उसके प्रति हमने अपनी दूरी बना के रखी है, माँ बाप से बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली हुई है कि इन चीजों को हमें छूना तक भी नहीं है, तो जब कोई ऑफर कर रहा है हमें तो मन तैयार नहीं है। मित्र मंडली उसे फोर्स कर रही है, अरे एक एक पैग तो ले लो, क्या हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने जीवन में कभी छुआ नहीं है और मेरे माता पिता ने मुझे इन सब से दूर रहने को, क्यों क्यों तुम्हारे माता पिता ने ऐसे कहा है? नहीं, शराब बहुत बुरी चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे ही माँ बाप अच्छे है, हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है ना। इस प्रकार से वैरायटी बातें बना बना कर उसको आखिर क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। वो सामने से जितना बोला जा रहा है उतना वो क्या कर रहा है, अंदर में उसका चल रहा है, पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं। तो किसको पूछ रहा है ये पीऊं या नहीं पीऊं? बुद्धि को पूछ रहा है। तो पहली बार बुद्धि बहुत टाइम लगाती है उसको हाँ करने में, क्योंकि वर्षों से नहीं पिया हुआ है, शिक्षा मिली हुई है, अच्छी चीज नहीं है ये, तुम्हारे को पतन की ओर लेके जाएगी। लेकिन इधर से इतना सारा फोर्स है मित्र मंडली का, और मन क्या करता है, क्योंकि कहते मन और बुद्धि के बीच में कौन सा रिलेशन है। आपने देखा होगा एक बच्चे को भी, समझो उसको सर्दी हो गई है और बहुत ही बलगम भर गया है, नाक बहती रहती है, और ऐसे समय पर किसी ने आइसक्रीम पार्टी रख दी है तो बच्चा भी ललचाता है, मेरे को भी आइसक्रीम चाहिए, और माँ कहती है नहीं खाना है, तो वो क्या करेगा, उसका जी ललचा रहा है, मम्मी आइसक्रीम खाऊं क्या, मम्मी बोलती है नहीं, थोड़ी देर बाद रुक के मम्मी आइसक्रीम खाऊं क्या, बोलती है नहीं, फिर थोड़ी देर रुक के मम्मी आइसक्रीम खाऊं क्या, अब मम्मी बोलती है देखो नहीं बोला ना, तो बार बार क्यों पूछ रहा है, तो आप हाँ क्यों नहीं बोलती हो, हाँ मतलब क्या, बच्चे की आदत क्या होती है, मनवाऊंगा तो अपनी ही बात, पर हामी भरवाऊंगा मम्मी से, कल को कुछ हो जाएगा तो आपने ही तो बोला था, आपने ही तो बोला था, और उसको सिखाया गया है कि बेटा बिना आज्ञा के नहीं करना है, तो आज्ञा ले रहा है, फिर आप हाँ तो करो ना। ऐसे ही हमारे अंदर ये बातें चल रही होती है, होती है नहीं होती है, कोई भी बात आती है, बस वही अजामिल के साथ हुआ। और फिर तो ऐसा हुआ कि एक बार दो बार, हम भी यही बताते, एक बार हामी भर ली कि चलो सभी मित्र मंडली कह रहे हैं, तो बुद्धि बहुत समय के बाद कहती ठीक है, एक ही पैक की बात है ना, सिर्फ आज के दिन की बात है ना, और भी मित्र मंडलियों के मन रखने के लिए कोई बात नहीं, मन बच्चे को माँ बुद्धि की आज्ञा मिल जाती है और वो पी लेता है। और थोड़े समय के बाद फिर ऐसी सिचुएशन बनती है, फिर से वही ऑफर आता है, फिर मन और बुद्धि के बीच में डायलॉग चलता है, लेकिन अब की बार, पहली बार जितना लंबा समय लगा था अब की बार उतना लंबा समय नहीं लगता है। फिर तीसरी बार चौथी बार धीरे धीरे ये समय क्या होता है, कम होते होते 20-25 बार अगर हो गया, अब तो समय कम होने की जरूरत ही नहीं, समय ही जीरो है, मन न पूछता है न बुद्धि को हाँ करना पड़ता है, वो संस्कार यही सिखाते हम। अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, पहले तो उसने आपको अपने आप को बहुत कोशिश की, धिक्कार है, छी छी बहुत किया, लेकिन फिर मन धिक्कार छी छी किस आधार से कर रहा है, जो उसके अंदर ज्ञान भरा है, लेकिन एक बार देख लूं दूसरी बार देख लूं ये कौन कर रहा है, उसको उसका मन उसको सौर खींच रहा है। और ऐसा करते करते उसने क्या किया? एक दिन तो उसने वेट किया कि मैं खड़ा रहता हूं, आखिर तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे और फिर मैं इसका पीछा करूंगा, क्योंकि उसको लगता है मैं भी ऐसा सुख प्राप्त करूं। और वो वैसा करता है, क्योंकि दोनों जुदा होकर चल पड़ते, ये पीछे पीछे चल पड़ता है स्त्री के, और उसके सामने ऑफर रखता है कि जो क्रीड़ा आप उस पुरुष के साथ करती हो वही क्रीड़ा आप मेरे साथ करो। वो कहती है मैं तो वैश्या हूं पैसे से, और इस क्रीड़ा करने का शुल्क लेती हूं, फीस लेती हूं, चार्ज करती हूं, और सौभाग्य से अजामिल पैसे वाली पार्टी था तो पैसे लाला के देता था, लेकिन पैसे ला ला के भी इतना दिया कि सारा कुछ खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, वैश्या गामी हो गया, इतना ही नहीं उसको जीवन संगिनी बना दिया, जो उसकी पत्नी थी उसको भी घर से बाहर कर दिया। तो ये पतन का मनोविज्ञान है जो हम पहले दिन में सिखा देते हैं कि मन, बुद्धि और फिर संस्कार, कि कोई भी चीज हमारे जीवन में जब पहली बार आएगी जो हमारे बुद्धि में जो ज्ञान है उसके अपोजिट है, और कोई हमें उसके लिए उकसा रहा है, तो भीतर में डायलॉग चलेगा, और भीतर में डायलॉग चलेगा चलेगा, और बड़ी मुश्किल से हम हामी भर देंगे एक बार, फिर दूसरी बार, पिछली बार तो किया था, कुछ हुआ थोड़ी, क्या बिगड़ा, कुछ तो नहीं बिगड़ा ना, फिर दूसरी बार कर लेते, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और ऐसे करते करते संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है अब मन और बुद्धि का रोल खत्म हो गया, पूछने की मार्जिन नहीं है तो बुद्धि जवाब क्या देगी, सीधा कर्म में आ जाते हैं। और इसका भी ऐसे ही पतन हुआ, अजामिल जैसे पापी जो बाबा कह रहे हैं। अब कई बार प्रश्न आता है, हम लोग तो ब्राह्मण ऐसे काम नहीं करते, लेकिन हम कौन से युग में जी रहे हैं? आज मोबाइल के युग में जी रहे हैं, हर एक के हाथ में है और उसमें पूरी दुनिया है, अच्छी भी दुनिया है उसके अंदर, बुरी भी दुनिया है, और वो आपके ऊपर कोई नजर थोड़ी रख रहा है। उसके भी मन में यही आया था, यहां मैं अकेला हूं, मुझे देख कौन रहा है, मोबाइल में भी क्या नहीं आता है। आप और तो और छोड़ो, हम अपने अध्यात्म के ही YouTube भी चलाने जाएंगे, वो मोनेटाइजिंग के नाम पर YouTube में भी पैसे की कमाई हो रही है, तो उसमें ऐड आ रही है, और उसमें ऐड कई बार हमारे ज्ञान के एकदम विपरीत चल रही होती है। हम कहेंगे हम कहीं देखने थोड़ी गए, हमने कोई खास ऐसा वाला सीरियल थोड़ी देखा, हम तो अपना ही ज्ञान का YouTube खोला है, लेकिन उसमें भी आ जाता है, एक बार दृश्य अंदर चला जाता है और थोड़ा सा चिंतन आरंभ हो जाता है, और उस चिंतन से फिर हम कब गिर जाएंगे हमको कुछ भी पता नहीं। और इसलिए बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, मोबाइल भी एक बहुत बड़ी माया है, कि वो माया में आप ऐसे लिप्त हैं आजू बाजू आपको कोई देख थोड़ी रहा है, आपकी आंखें तो सिर्फ इधर गड़ी हुई है, आप क्या देख रहे हैं किसी और को थोड़ी पता है, किसी और को नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हुए हैं और पूरी ट्रैकिंग रखी हुई है उसकी, किसने कौन सी वेबसाइट खोली, कितनी देर तक खोली, उनके पास पूरी ट्रैकिंग होती है। हाँ, जो कंप्यूटर की भाषा जानते हैं उसमें हिस्ट्री आती है, आती है ना हिस्ट्री, जो कंप्यूटर जानते हैं कि तुमने क्या क्या खोला है। तो कई बार लोग कहते इसमें भी पकड़ा जाते हैं, इसलिए हिस्ट्री को फटाफट फटाफट क्या कर दो, क्लियर कर दो। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन यहां पे हिस्ट्री क्लियर कर सकोगे क्या? वहां तो फिर भी क्लियर कर दोगे, और फिर भी किससे क्लियर करोगे आप? जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं। लेकिन इन कंप्यूटरों की कमांड जिनके हाथ में है, वो फिर भी, आपने हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, फिर भी आपको बता सकते हैं। इतना जबरदस्त ट्रैकिंग होता है। आज हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? कल ही एक बहन जी ने, हम ऑफिस में बैठे होते हैं, दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा वो लोग क्या है? कहती बहन जी मैंने अभी यहां चप्पल उतार के जस्ट बाबा के पास 2 मिनट के लिए गई हूं और वहां से आई हूं और मेरी चप्पल गायब है। तो मैंने कहा भाई भीड़ में ऐसे होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। नहीं नहीं यहां कैमरा लगे हुए हैं, हम कैमरा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए तो कैमरा मैन के पास जाना पड़ेगा ना। लेकिन और वो लगभग दोपहर का 2 बज रहा था, तो मैंने कहा अभी तो कैमरा मैन भी अपनी, मतलब जो ऑफिसेस हैं तो वो तो बंद हो गई होगी। नहीं नहीं आप मुझे बताओ। मैंने उनको फिर एड्रेस दी, वो पता नहीं क्या किया उसने। मैंने कितना विश्वास है कि अगर कैमरा लगा हुआ है ट्रैकिंग होने ही होने वाली है, भल जिसने भी किया वो व्यक्ति भाग भी क्यों नहीं गया हो, आप उसको जान भी नहीं सकेंगे, वापस ले भी, लेकिन पता तो चलेगा कि उठाने वाला कौन व्यक्ति था। इतनी जबरदस्त ट्रैकिंग आज विज्ञान के साधनों ने भी की है। तो आत्मा के अंदर कितनी जबरदस्त ट्रैकिंग है। बाबा तो कई बार मुरलियों में कहते हैं, बाबा को वंडर होता है इतनी छोटी सी आत्मा में कितने जन्मों का पाठ है, 84 जन्मों का पाठ। आप अगर इस एक जीवन को ही देख लो, और एक जीवन में भी, एक दिन में भी क्या क्या नहीं करते हम, कितनी कुछ रिकॉर्डिंग इसके अंदर, और वो मिटती नहीं, और सिर्फ मिटती नहीं, लेकिन जैसे कहा कि जब हम सोल कॉन्शियस वाली जीवन जीना आरंभ करते हैं, तो ये जो हमारी पुरानी आदतें होती है उससे हम बाहर निकल के आते हैं। लेकिन थोड़ा भी फिसले, थोड़ा भी उनको पानी और धूप मिला, फिर वो क्या होंगे, निकल कर आएंगे। और ये हुआ अजामिल के साथ ऐसा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाओ। आज भी कहा ना देही अभिमानी बनना है, हमने कहा ना हमें नया सुनना है, नहीं सुनना है नया। कितने वर्षों से हम ब्राह्मण बने हैं, पहला लेसन है हमारा देही अभिमानी बनना। दिल पर हाथ रखकर कोई बोल सकता है कि मैं 24 घंटा देही अभिमानी स्थिति में रहता हूं? जब पहला ही लेसन पास नहीं हुए हैं तो नया क्या सुनना चाह रहे हैं हम? और पहला ही लेसन हमारा अंतिम लेसन है, तो तैयारी तो उसी की करना है, नए को सुन के करना क्या है हमको? नए को सुन को कोई फायदा ही नहीं है ना। जो मुझे पता है कि यही पेपर है मेरा, तो देही अभिमानी स्थिति को बढ़ाते चलना है, क्योंकि पतन किसी भी घड़ी किसी भी दृश्यों से ये इंद्रियां क्या करती है, बाह्य जगत से सारा डेटा लेके मन को पहुंचाती है, और फिर मन क्या करता है, बुद्धि के सामने रखता है, और अगर बुद्धि कमजोर है तो मन बच्चा उससे हां भरवाने में देरी नहीं करता है, करवा लेगा उससे। और इतना ही नहीं, अंदर चित्त में जो बहुत सारी बातें रखी पड़ी है, वर्तमान में जो देखा उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी मन के पटल पर आके खड़ी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, मन के पटल पर जो कुछ आता है कहां से आता है? इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से गया, या अंदर जो स्टोर है उससे मानस पटल पर आया। एग्जाम के दिनों में हम एग्जाम लिखने जाते तो कहां से आता है? कोई बाहर हमारी आंसर शीट पुस्तिका, हमारी नोटबुक हमारे सामने थोड़ी होती है। कहां से आता है? हमारे अंदर से बाहर आ रहा है ना। पहले बाहर वाले को हमने अंदर भेजा पढ़ पढ़ के, और एग्जाम में आंसर शीट में क्या कर रहे हैं? अंदर वाले को बाहर ला रहे हैं। तो मन के पटल पर दोनों काम चल रहे होते हैं। तो जिस प्रकार का प्रश्न उसी प्रकार का उत्तर अंदर से निकल के आता है, ऐसा होता है ना। तो जिस प्रकार की बातें हमारे सामने आएगी इंद्रियों के माध्यम से, वैसी ही अंदर वाली बातें कुछ भी निकल कर आएंगी जो 63 जन्मों से हमारे भीतर में जमा पड़ी है। प्रारब्ध शब्द जो बाबा ने यूज किया, क्या होता है प्रारब्ध? प्रारब्ध क्या होता है? प्रा प्लस लब्ध, प्रा प्लस लब्ध। प्रा माना प्राप्तियां, लब्ध माना उपलब्ध। आपने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो प्राप्तियां आपके हिस्से में है, वो सारी की सारी अभी नहीं मिलने वाली आपको। उसी आपकी ही जो प्राप्तियां हैं, उस समय समय पर उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्म प्रारब्ध खाएंगे, 21 जन्म तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसको अगर मैं और सरल करूं, आपने जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं, सुबह निकले रात को आए, तो इतना सारा आटा इकट्ठा बना लिया, खाना अभी नहीं है सारा, लेकिन पूरा इकट्ठा आटा गूंथ कर रख दिया। अभी दो रोटी, दिन में दो रोटी, शाम को दो रोटी, रोटी भले ताजी बनाएंगे लेकिन आटा, लेकिन उसी में से टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहे हो ना। ये कहते हैं प्रारब्ध, कि रेडी तो इतना हो चुका है आपके हिस्से का, लेकिन आप इसको अभी नहीं खाने वाले हैं। तो ऐसे ही हमने जो भी पाप और पुण्य इन 63 जन्मों में किए हैं, वो भी टुकड़ा टुकड़ा होकर हमारे इस जीवन में आ रहे होते हैं, और हमें नहीं पता कौन सा वाला टुकड़ा हमारे पास आएगा। और इसलिए हमें बहुत बहुत सावधानी वाला जीवन जीने के लिए बाबा कहते हैं। और जो टुकड़ा आएगा, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है और शरीर भी नहीं छोड़ रहा है, तो क्या कहते हैं? कर्म का जब तक चुकता नहीं होगा, भोगेगा नहीं, तब तक ये शरीर छोड़ नहीं सकता। लेकिन जिस घड़ी भोग पूरा होगा उसके कर्म का, उस घड़ी वो व्यक्ति शरीर छोड़ देगा। तो ये तो अंतिम, लेकिन जीवन में रहते भी तो ऐसा होता है ना, कि कुछ जीवन के कुछ वर्ष ऐसे आते हैं कि बहुत कठिनाई से गुजरे, फिर उसके बाद एकदम किस्मत करवट बदल देती है, होता है नहीं होता है? अच्छी चलती है, फिर वापस किस्मत करवट बदल देती है, होता है ऐसा? होता है या नहीं होता है? हमारे ही पाप और पुण्यों का वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। कभी पाप वाला आता है और कभी पुण्य वाला आता है। तो अजामिल के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये था कि क्यों उसका पतन हुआ, कि गठरी है अंदर और दृश्य देखा और उसमें बहक गया, और उसका पाप वाला कोई जो गठरी में था वो सामने आके खड़ा हो गया, जो फिर कहते कि उसको जीवन संगीनी बनाया, 10-10 बच्चे पैदा कर डाले उससे। आखिरी वाले बच्चे का नाम रखा था नारायण। और जब मृत्यु सामने आई तो कहा किसको पुकारा? नारायण को पुकारा। और क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ बोलो? उसका उद्धार हो गया। है जरूर ऐसा, परंतु इसकी एक स्टेप उन्होंने खा ली है। किसने? जो कथावाचक है। कथावाचकों ने एक स्टेप खा ली है कि जरूर उसने नारायण का नाम उठाया, पर उस समय वो मरा नहीं है। सुनाते ऐसे हैं, लेकिन नारायण नाम उठाया, मृत्यु हुई, और परंतु उस समय वो मरा नहीं है। पर क्यों ऐसा बोल दिया कि मरा? क्योंकि उस समय हुआ क्या है? तो कहते हैं कि एक बार वो ऐसा ही लेटा हुआ है, और उसके क्योंकि व्यक्ति के मन में तो व्यक्ति ही जानता क्या चल रहा है, बाहर वालों को थोड़ी पता है, तो उसके सामने तीन यमदूत आके प्रकट होते हैं। और वो जो तीन यमदूत आके प्रकट होते हैं, तो यमदूत तो आपको पता है कैसे भयावह होती है उनकी छवि, काले काले, नाखून नुकीले, बाल एकदम कैसे रोंगटे खड़े खड़े एकदम से, और आवाज कर्कश। तो वो तो उनको देखकर हाथ में फांसी का फंदा, और वो उससे कह रहे हैं तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हमें यमराज ने भेजा है, हम तुम्हें फंदा लगाकर लेकर जाने के लिए आए हैं। और भीतर से कांप गया, भय में कांप उठा वो, और उस भीतर के भय के कंपन में, जैसे हम भी जब कभी भय में होते हैं तो कुछ चिल्ला उठते हैं कि नहीं उठते हैं? रात में भी कुछ भय, अंधेरा हो और कुछ ऐसे हमें डर लग गया, हम क्या करते हैं? चिल्ला देते हैं। फिर जिसका जो फेवरेट नाम होगा उसको ही बुलाएगा, ऐसा ही होगा ना? और इसका फेवरेट तो कौन था? वो लास्ट वाला बच्चा था, उसने नारायण बुलाया उसको उस समय। और जैसे ही नारायण बुलाया है तो हुआ क्या है? ऐसे नहीं कि मृत्यु हो गई है उसकी, उसके सामने चार विष्णु दूत भी प्रकट हो गए। देखो संख्या भी बताई है कि तीन और चार, क्या हिसाब होता होगा इनका कि तीन ही क्यों यमदूत और चार ही क्यों विष्णु दूत? तो उसमें दिखाते चार विष्णु दूत आए और इन दोनों का आपस में संवाद होता है। विष्णु दूत कहते तुम कौन हो, इसको क्यों लेके जा रहे हो? वो कहते इसने खूब पाप किया है, ये नरक का भागी है, और इसलिए हम इसको लेने आए हैं। वो कहता इसने नारायण नाम बोला है। इस प्रकार से कुछ उनका संवाद चलता है। अब वास्तव में ये क्या दिखाया है कहानी में? ये दिखाया है कि बाबा कहते हैं ना, कभी तो इंसान ने जो पाप पुण्य किए हैं उसके जीवन की रील उसके सामने प्रकट हो ही जाती है। और विशेषकर जब कहते हैं मृत्यु के निकट आता है व्यक्ति, खास करके तो हमने कहा कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिसने सुने होंगे उसमें यही होता है, बोलते हैं वो अपने जीवन की पूरी रील देख लेते हैं, और उस जीवन की रील में जब देखते हैं तो देखते मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, वहां उसको बोध होता है कि ये मैंने क्या किया है। और कहते हैं कि उनको फिर प्रकाश का भी अनुभव होता है, एक ज्योति का, एक प्यारी सी ज्योति जो अनकंडीशनली उसको क्या कर रही है, प्यार दे रही है। और फिर वो सब चला जाता है, लेकिन उसके अंदर में वो एक निश्चय खड़ा होता है, अब मुझे अगर जीवन जीने का मौका मिलेगा, अब मेरा जीवन इस तरीके का नहीं होगा, जो गलत राहों पर चलकर मैंने जीवन जिया है ऐसा जीवन मेरा नहीं होगा, अब मैं श्रेष्ठ मार्ग पर चलूंगा, तो ऐसे ही इसके साथ हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब सेव होते जा रहा है ना। अंदर की हार्ड डिस्क में, हमारा चित्त रूपी हार्ड डिस्क में सब कुछ क्या होते जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। और कभी तो जैसे कि हम मोबाइल चला रहे हैं, हम स्टोरेज को अगर खोलेंगे अपने, तो कई बार गलती से कहीं पे भी क्लिक हो जाता है, हो जाता है या नहीं होता है? जो मैं खोलना नहीं चाहती वहां पर भी क्लिक हो जाता है और फोल्डर खुल जाता है। तो इसका भी ऐसे ही हुआ कि जीवन भर जो इतना कुछ वो गलत कार्य किया है, कहां वो ब्राह्मण था, सदाचारी, शीलवान, जिसका धंधा पतितों को पावन बनाना, और कहां वो एकदम उल्टा हो गया, उस वेश्या की पूर्ति करने के लिए डकैती, चोरी, सब कुछ किया, खूब अपराध किए। और वो जो अंदर में स्टोर्ड होता गया, एक दिन उसके सामने लेटा हुआ वो सारा खुल के आ गया। और जो सारा खुल के आया है, घबरा गया है। और जो कहा कि नारायण, कहा नारायण का मतलब क्या हुआ? भय में क्या होता है, जब मैं कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर कुछ क्लिक करने जा रही हूं और मेरा हाथ हिल रहा हो, तो कुछ और भी क्लिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो उसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वहां पे, उस घबराहट में। और उस साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस में वो फोल्डर भी खुल गया जो ब्राह्मण वाला जीवन जी रहा था वो। और वो जो ब्राह्मण वाला जीवन जी रहा था, और वहां से उसकी वो सारी बातें याद आ गई, मैं कैसा जीवन जी रहा था, एक पवित्रता की डगर पर चल पड़ा था, और उस पवित्रता की डगर पर चलते चलते मैं कौन सी डगर पे चल पड़ा, और ऐसी डगर पे चल पड़ा कि जिसकी सजा देखो मेरे को क्या मिलने वाली है। और चूंकि विष्णु देवतों का उनका वार्तालाप चला, तो उसमें वो याद आ रहा है, बाबा की बातें याद आ रही है। ज्ञान में क्या सुन रहे हम, बच्चे श्रीमत पर चलोगे मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम श्रीमत पर चलोगे मैं तुम्हारे सदा साथ रहूंगा, जीवन में कोई भी बात आएगी सर्वशक्तिवान मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तो सारी बातें उसको याद आ रही है कि पतित मार्ग पर जाने का ये, पवित्र मार्ग पर जाने का ये रिजल्ट, और मैं चल रहा था पवित्र मार्ग पर, और क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं उस ओर चल पड़ा, और इतनी भयावह सजा से मैं गुजरूंगा। नहीं नहीं, अब भी मेरे पास समय है, मैं वापस अपने जीवन को यू टर्न दे दूं। और वो यू टर्न के चक्कर में उसने सारा प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करना मतलब जो मेरे से अपराध हुए हैं, जो मेरे से दुष्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जो मैंने गलतियां की है, उसको स्मरण में लाना। उसको स्मरण में लाना अर्थात अंदर जो स्टोर है उसको वापस बाहर लाना। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, बाबा को पत्र लिखो, लोग कहते क्या लिखना है बाबा को पत्र में, ये सब लिखना होता है कि हमारे से अगर कुछ हो गया है वो बाबा को बताओ। जब बाबा को बताएंगे और निश्चय करेंगे, स्वीकार करो कि जी बाबा आपने जो राह दिखाई है उस राह के विपरीत भी मैं कुछ कर बैठी हूं, जो आपने मार्ग दिखाया जो उसके अनुकूल नहीं है, जिसके प्रतिकूल हूं, ऐसा भी मैंने ब्राह्मण जीवन जीते जीते किया हुआ है, और मैं उसको दिल से स्वीकार करती हूं कि जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है, लेकिन अब मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। अब मैं इस मार्ग पर जो फिसल गई थी उस मार्ग से सही मार्ग पर चलना चाहती हूं। इतनी स्वीकारोक्ति स्वयं की कि मैंने ये कुछ किया है, जो मैं उस मार्ग पर चल रही थी वो वाले बीज अब क्या हो रहे हैं, शिथिल पड़ते हैं। वरना वो प्रबल थे, उसकी प्रबलता बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब हम इस प्रकार से स्वीकार कर लेते उसकी प्रबलता कम होती है। और अच्छे मार्ग पर चलने का जब निश्चय करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय के साथ हम बाबा के साथ कनेक्ट होना इजी होता है, वरना वही वही बातें चलती रहती हैं। यही होता है ना? आज अगर योग में मन नहीं लगता है या योग करते करते कहीं भटक जाते हैं तो क्या बातें हैं। यही तो है, तभी तो बाबा कहते मुझे सब कुछ बता दो। जब सब कुछ बता दोगे तो फिर मेरे में मन लगाना, मतलब क्या, ये है शरीर, ये है आत्मा, ठीक है। अज्ञानी थे तो पता था सिर्फ शरीर ही सब कुछ है, ज्ञान में आए पता चला नहीं शरीर के अलावा आत्मा है, दो अस्तित्व है। फिर ज्ञान में आगे बढ़े पता चला नहीं इसके बीच में एक सूक्ष्म शरीर है, यही पता चला। ये सूक्ष्म शरीर ही मन का प्रतीक, मन इधर जाएगा संसार में इंद्रियों के माध्यम से, वो कुछ कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने करने के बाद होश संभाला है, होश संभाला है, बाबा को बताया है, तो ये फिर जो क्या हो जाएगा, इस तरफ का आकर्षण मेरा कम हो जाएगा और मन अभी इधर जो आत्मा है, इधर जो चैतन्य शक्ति है उसकी ओर मुड़ेगा। तो जैसे यहां पे मन बुद्धि संस्कार का रोल हो रहा था कि एक बार किया फिर दूसरी बार किया फिर तीसरी बार किया फिर संस्कार बना, अब बिना सोचे समझे होते जा रहा है। अब यही वाला प्रोसीजर इधर भी तो होगा, समझ में आ रही बात। जो संसार के लिए ये कार्य कर रहा था मन बुद्धि संस्कार का वाला रोल, अब अगर मैंने मन को इसकी इस दिशा से उठा के इस दिशा में लगाया तो इधर भी तो मन बुद्धि संस्कार का रोल चालू होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो जैसे यहां पे बताया था कि शुरू में तो मन बुद्धि का डायलॉग चलता रहता है, लेकिन वो जब एक चार बार पांच बार दस बार बीस बार रिपीट हो गया, अब उनका भी रोल खत्म, संस्कार के वश कर रहे हैं हम, है ना। इधर भी तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इधर भी शुरू में मैं मन बुद्धि से विचार करती रहूंगी, मैं आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूं, लेकिन इधर भी तो ये क्षण आना चाहिए कि मैं विचार भी नहीं करूं तो भी मेरी वो स्थिति हो। समझ में आ रही बात आपको, ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। और ये स्थिति भी कब होगी, ये स्थिति कब होगी, संस्कार तक बने। और अर्थात मैं जब बाबा के पास जाऊं, मन बुद्धि भी काम करना छोड़ दे, संस्कार का मतलब तो यही है ना, उसको ही तो कहा बाबा कहते तीन बिंदियां लगाओ। अब बिंदी का मतलब क्या होता है, उसमें विचार की मार्जिन रह गई क्या, विचार की मार्जिन तो वहां है ही नहीं। और इसीलिए कहा हमने आपको, एकांत में बैठो, एकांत में बैठो। हम क्या कहते हैं उस सुख को जो प्रभु मिलन का है, क्या आता है मुरलियों में, अतीन्द्रिय सुख। अगर पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से। कौन है वो गोप गोपियां। अब अतीन्द्रिय माना क्या होता है, इंद्रियों से पार वाला सुख। लेकिन अगर मन बुद्धि चल रहा है तो मन बुद्धि भी तो इंद्रिय है ना, भले स्थूल नहीं है, तो सूक्ष्म है, पर है तो इंद्रिय ना। लेकिन अगर अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ विचार के माध्यम से योग चलता रहेगा सिर्फ, तो अति इंद्रिय बने किधर है? अभी इंद्रिय से परे गए कहां है अभी हम? समझ में आ रही बात? तो वो इंद्रिय से परे होने के लिए भी एकांत में बैठकर अपने आप से अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कि अपने आप से हम मन बुद्धि चला रहे थे, लेकिन वो विचार बार बार करते करते भाव का रूप ले ले। किसका रूप ले ले? भाव का। और जब एक बार विचार भाव का रूप ले लेगा, वहां से निर्विचार की स्थिति आरंभ हो जाएगी। वहां से निर्विचार, अर्थात जैसे कहा ना, मन बुद्धि पहले डायलॉग कर रहे, लेकिन फिर वो संस्कार में बदल गई वो बात। तो अब कर रहे हैं क्या डायलॉग? नहीं कर रहे। इधर भी हमने विचार किया, भावना के स्तर तक पहुंच जाए हम। अब सवाल उठेगा, भाव माना क्या होता है? क्या होता है भाव? क्या अंतर है विचार और भाव में? विचार एक तरीके से सिर्फ मन में चल रहा है, इस क्षेत्र तक ही है। लेकिन जब विचार बार बार दोहराते भाव का रूप लेता है, पूरे शरीर में, जिसको कहते ना नस नस में बाबा की याद समाई हो, किसको कहते हैं ये? जब विचार भाव में परिवर्तन होगा। हनुमान के लिए क्या दिखाते? कहाँ है मेरे भगवान बैठे हुए? नस नस में, एक एक रोए रोए में, वही भगवान की जो शांति सागर कह रही हूं, वो यहां से बह जाना चाहिए पूरा। जिसको कहते होलिस्टिक, हम बोलते होलिस्टिक हेल्थ। कई बातों में आजकल हम होलिस्टिक शब्द यूज करते हैं। हेल्थ माना हेल्थ, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ माना हर प्रकार की हेल्थ। तो विचार माना सिर्फ खोपड़ी की लेवल तक है अभी हम, लेकिन भाव माना सर्वांग। इतने हम उसमें खो गए हैं कि जब व्यक्ति खो जाता है, फिर विचार उठता है क्या? खोने की अवस्था तक हम नहीं पहुंचे अभी। तो हमें वो खोने की अवस्था में पहुंचना है कि जहां विचार उठने को ही तैयार नहीं है। कहा ना, संस्कार बन गया तो अभी विचार उठ ही नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है कार्य। तो वो कार्य फिर अजामिल ने किया, प्रायश्चित किया, और उसके बाद उसको वैराग्य जागा, इंद्रियों वाले जीवन से वैराग्य जागा, और अतिंद्रिय वाले जीवन से उसका भी संकल्प उसको तैयार हुआ। तो ये चार दूत कौन आए थे? ये हमारी बहनें ही तो आपके पास आ रही होती है। हाँ, ये विष्णु दूत है ना, बार बार आपको क्या करती है? सचेत करती है, सचेत कर करके पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ाती है। और यहां पर भट्टी पर इसीलिए तो लेके आई है बहने आपको, और किस लिए लेके आई है? तो विष्णु दूत जब उसके पास आए, उसकी सोच बदल गई, इंद्रियों वाले जीवन से विकर्षण वैराग्य, अब मुझे इस तरफ की यात्रा आरंभ करनी है। और कहते हैं फिर यहां से जब वैराग्य हुआ, वो घर छोड़ के, वो वैश्या जिसके साथ रहता था, जो बच्चे जिनके आकर्षण में था, उम्र तो हो चुकी थी काफी, चला गया हरि के द्वार और नवदा भक्ति की। यहाँ पे हरि का द्वार क्या है? चले जाओ परम धाम, हरि का द्वार तो वो है ना। नवधा भक्ति की, नवधा भक्ति में लास्ट स्टेप होती है आत्मनिवेदन। पहला स्टेप होता है श्रवण, दूसरा होता है कीर्तन, तीसरा होता है स्मरण। ये अपने आप से हो रहा है। श्रवण भी मैं करूंगी, कीर्तन माना वर्णन भी मैं करूंगी, और स्मरण भी मैं करूंगी। फिर तीस अलग और तीन आते हैं नेक्स्ट, उसमें आता है पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, अर्थात कर्म से कुछ करूंगी अपने भगवान के लिए। पाद सेवनम मतलब उनके पास सेवा में हाजिर रहकर जो सेवा कहेंगे वो करेंगे। अर्चनम मतलब उनकी महिमा करेंगे, जैसे आज सुबह आपने किया, मम्मा की महिमा की ना आपने। और वंदनम, वंदे मातरम कहते हैं ना, क्या होता है वंदनम माना, सैल्यूट, अर्थात सम्मान के योग्य उनको सम्मान देंगे। यह है नवदा भक्ति। तो छह हो गए और लास्ट के तीन आते हैं, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, कि दास की तरह सेवा में मैं हाजिर हूं, जो कहो जी हाजिर, हाजी के पाठ में। सख्यम माना सखा की भाव से, कहते ना और किसी से जो बात नहीं कह सकते सखा से कहते हैं। तो मेरे जीवन में जो पाप पुण्य मैंने किए मुझे पता तो होता है, लेकिन सबके सामने थोड़ी खोल सकते हैं, लेकिन सखा के सामने, क्योंकि मुझे पता है मेरा सखा मेरी प्राइवेट बातों को कहीं कुछ नहीं करेगा, है ना, विश्वास होता है ना, तो सारा उसके सामने खोल देते हैं। और आत्मनिवेदन माना समर्पण, अब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, मैंने अपने आप को आपके सामने समर्पण कर दिया है, जो कुछ करना है अभी आपको करना है। यह है नवदा भक्ति। और कहा कि उसने वो जाके नवदा भक्ति की, कहां, हरिद्वार में जाकर। कौन सा है हरिद्वार, परम धाम। तो दिन भर तो कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ज्ञान का श्रवण चल रहा है ना, जो कुछ आपको कहा जा रहा है हाजी हाजी करके कर रहे हो ना। लास्ट तक पहुंचना आत्मनिवेदन, कि वो अवस्था में पहुंचूं कि परम धाम में पहुंचकर मैं अब विचार भी नहीं करूं, मैंने निवेदन कर दिया, सब कुछ आपके सामने रख दिया, पत्र लिखा हमने, बाबा है हमारे जीवन में ये बातें, अब मैं आपके द्वार पर आके बैठूंगा समर्पित, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे विश्वास है मेरे लिए क्या सही है, अब आप उस प्रकार से मेरा ऑपरेशन करोगे। लौकिक में गीत आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हाँ? बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। तो बस न कुछ मैं कहूंगी न कुछ आप कहेंगे, लेकिन उस स्थिति में जब हम बैठे रहेंगे, वो परमात्मा जो पावर हाउस है वो कार्य आरंभ करेगा, उसके प्रकंपन आपके पास पहुंच पहुंच कर आपके जो 63 जन्मों की गठरी है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यूं कहें कि वो 63 जन्मों का जो फोल्डर है उसके ऊपर वो किरणें कौन सा काम करेगी, सूर्य की किरणें क्या करती है, जब सूर्य गगन में उपस्थित हो जाता है तो क्या करता है, हाँ, फूल अपने आप खिलने लगते हैं, खिलने लगते हैं नहीं, कलियां बंद होती है खुलने लगती है, कोई किरण जाके थोड़ी बोलती है खुल खुल खुल, तब खुलेगा, स्पर्श हुआ खुलने लगी। और जो जीवड़े जंतु है उसके पास जाएंगी किरण, तो वो, तो हमारे पास दो फोल्डर है, एक सोल कॉन्शियस वाला और एक बॉडी कॉन्शियस वाला। बॉडी कॉन्शियस वाले फोल्डर में जो कुछ है उसको क्या कर देगी, वो उसकी किरणें उसके प्रकंपन खत्म कर देगी, उसको भस्म कर देगी, अर्थात उसको मर्ज कर देगी। और जो मेरा सोल कॉन्शियस वाला फोल्डर है उसके पास जाके क्या करेगी, उसको खोल देगी। हमारे फाइलें बंद पड़ी है ना, पता तो है मैं शांत स्वरूप हूं प्रेम स्वरूप हूं, पता नहीं है क्या, पर निकल नहीं रहा है ना बाहर। तो परमात्मा के पास जाके बैठेंगे, वो वाले फोल्डर पर उस परमात्मा की प्रकाश की किरणें उसके गुणों के प्रकंपन पड़ेंगे, अपने आप वो फोल्डर खुलते जाएंगे अपने आप। जो हम वर्षों से मैं हूं प्रेम स्वरूप बोलती आ रही हूं पर प्रेम निकल ही नहीं रहा है नहीं निकल रहा है ना प्रेम। तो इतना आत्मसमर्पण करके तो वो अजामिल ने किया। और तभी बाबा कहते अजामिल जैसे पापी भी तर जाते हैं जब भगवान का नाम भगवान के पास अपना समर्पण कर देते हैं। तो हमें इस भट्टी में, भट्टी का मतलब यही कहा था पहले दिन कि जैसे हम आए हैं वैसे हमें नहीं जाना है, जो हमारे अंदर है उसे झांक कर देखना है, उसको स्वीकार करना है, उस प्रभु के सामने रखना है और निश्चय करना है अब इधर वाला पथ नहीं इधर वाले पथ पे जाना है। शरीर बताया ना, शरीर आत्मा और बीच में मन, ये इधर भाग रहा था और इधर पाप का फोल्डर बड़ा होते जा रहा था, अब इस ओर से मैंने यू टर्न ले लिया, इधर इधर ले लिया और आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचाया, आत्मसमर्पण की स्थिति तक, और उसके जाके सामने बैठ गए। हम तुम एक कमरे में बंद, चाबी खो जाए तभी तो तीन बिंदु लगेंगे ना। चाबी खो जाए का मतलब ड्रामा की कोई भी बात याद नहीं आए, इस सृष्टि चक्र में हम क्या कर रहे उससे संबंधित कोई विचार नहीं उठे, बस मैं बिंदु आप बिंदु दोनों बैठे और वहां पर सारी कमाल हो जाएगी। और ऐसा ही उस अजामिल के साथ हुआ और अजामिल जैसा पापी भी उद्धार को पा गया। तो ये हमारी कहानी है। तो भट्टी में जब हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही हम जिस लेवल पे आए थे भट्टी के अंत में देखेंगे हमारी लेवल कुछ बढ़ गई है और यही भट्टी में आने की सफलता होगी। ओम शांति। Thank you.